ये माया के पार होना बहुत ही कठिन है माया को, लेकिन अगर ये माया से कोई ऊपर उठना चाहता है उसका सबसे सरल उपाय क्या है, तो उसको उत्तर में भी नवजोगत ग्रंथ बताया, तस्मात गुरु प्रपद्ये न जिज्ञासु श्रेयोत्तम साप्ते पारे च निस्नातम ब्रह्महीन व समास है। तो अगर कोई माया से ऊपर पा लेना चाहता है तो तस्मात गुरु प्रपद्ये न, इसलिए गुरु जी की जरूरत है। इसी जगत में भी देखिएगा, एक चोर भी अगर चोरी करना चाहता है गंदे से गंदे बात भी हो, जो सर्वप्रथम जो शराब पीता है जो बीड़ी फूकता है उसको भी कोई एक दिखाने वाला होता है, नहीं तो ये गंदा काम भी नहीं कर सकता है। जब गंदे से गंदे काम के लिए तब किसी जगत में कोई एक दूसरे को सिखाता है, जो अबाण मनुष्य गोचर जो हमारे मन और वाणी से जो अतीत है, जिनको बताया अध्यक्ष सज का मतलब जो भगवान हमारे जड़ इंद्रिय से जो ऊपर विद्यमान है, तो उसको पाने के लिए जब तक ऐसे कोई एक्सपर्ट गुरु नहीं हो तब तक उनको पाया नहीं जाता। इसलिए हमारे भागवत में कोई भी किसी शास्त्र को देखिए, हर शास्त्र में गुरु जी की महिमा बताया गया। इसलिए हमारे श्रीमद् भागवत में जहां जहां आप ध्रुव जी को भी कथा सुने होंगे, ध्रुव महाराज जब भगवान की भजन करने के लिए गए और भगवान को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो गए, उसी समय भगवान भी नारद जी को स्मरण करते हैं और नारद जी को भेज करके ध्रुव जी को उनका भजन का परिपाठ बताते हैं। और जब नारद जी आकर के ध्रुव जी को भगवान का स्वरूप कैसे, उनको कैसे भजन साधन करनी चाहिए, उनका क्या रूप है, कैसे त्रिसंध्या स्नान करके कैसे आचमन करने चाहिए, जब नारद जी उनको उपदेश दिया, नारद जी के उपदेश का अनुरूप जब श्री ध्रुव जी ने आराधना की, तब जाकर के भगवान प्रकट होते हैं। श्री व्यास नारद संवाद में भी कहते, व्यास तब कौन है, कहते व्यास नारायण स्वयं, कहते व्यास तब साक्षात भगवान की ये सत्ता में अवतार है, लेकिन होते हुए भी वे नरलीला उन्होंने की है, जैसे सारे ग्रंथों को उन्होंने बदलना करते हुए जैसे उनको संतोष नहीं मिल रहा है, जब जो साक्षात व्यास नारायण स्वयं भगवान होते हुए भी जैसे सारे ग्रंथों को प्रकट करके उनको कोई संतोष नहीं मिल रहा है, तो वहां पर नारद जी भी प्रकट होकर के असंतोष का क्या कारण है नारद स्वयं बताते हैं। कहते क्या व्यास तो स्वयं भगवान उनको क्या पता नहीं था, कहते उनको सब कुछ बात पता था, लेकिन वे जगत को शिक्षा देने के लिए एक असंतोष की एक उन्होंने केवल बहाना बनाए, जब तक जीवन में गुरु नहीं मिले, जब तक गुरु जी उपदेश नहीं देते हैं तब तक जीवन में जीव का कल्याण नहीं। भागवत में जितने सारे प्रसंग हैं, सारे प्रसंग में कल जैसे हम लोग ने श्री प्रह्लाद महाराज की कथा हम लोग ने श्रवण किया है, कहते प्रह्लाद महाराज का गुरु कौन है, कहते ये भी कहीं नारद है, मातृ गर्भ में रहते समय जब प्रह्लाद महाराज बच्चों को शिक्षा दे रहे थे कि बच्चों कौमार आचरित प्राज्ञम धर्मान भागवतांग दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थम, कहते बच्चों भगवान की भजन कौमार मतलब 5 साल से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बच्चों ने कहा प्रहलाद हमने सुन रखा है भजन रिटायर्ड लाइफ में जो बूढ़ा हो जाए कोई काम धाम नहीं रहे रिटायर्ड लाइफ में प्रभु जी को भजन करनी चाहिए, एक दो काम कर लो, तुम बोल रहे हो बचपन से ही भजन करनी चाहिए 5 साल उम्र से, ये 5 साल उम्र से भजन करने का क्या जरूरत है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं बच्चों दुर्लभ मनुष्य जन्म, ये जो मानव जन्म बड़ा भाग्यवान सुर दुर्लभ सदन बाबा, बच्चों ये मानव जन्म देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, भागवत के देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अगर हमको जन्म देना तो ये भारत रूप में मानव रूप में ही हमें जन्म दो। इसलिए सूर दुर्लभ देवताओं के लिए भी ये मानव जन्म, विशेष करके भारत रूप में और विशेष करके संतों के सानिध्य में जन्म मिलना तो बहुत ही कठिन है। इसलिए बच्चों ये दुर्लभ मनुष्य जन्म 84,00,000 भ्रम के ये नरक मिलते ही 84,00,000 जन्म भटकते भटकते बड़े कठिन से लग पास दुर्लभ पिता बहु संभवाते बड़े कठिन से केवल दुर्लभ नहीं ये सुदुर्लभ है। इस मानव जन्म को पाना कोई साधारण बात नहीं, लेकिन एक मिनट दुर्लभ मनुष्य जन्म कदापि अध्रुव है तो दुर्लभ, लेकिन पता नहीं हमारे एक संत कहते हैं भाजा मोरे मन श्री नंदना कृष्णा जब ब्रज में रहे उनका पुरोहित था सांडिल्य ऋषि। कृष्ण जब मथुरा में गए उनका जो पुरोहित थे गर्गाचार्य, और जो लेखा पढ़ा सीखने के लिए लिखने के लिए गए उनका गुरु जी बने शांति बन गए। इसलिए कृष्ण भगवान अपना सखा भगवान होते हुए भी हुए नर लगा करके वो भी गुरु ग्रहण किया। राम स्वयं भगवान राम गुरुदेव कौन थे? श्री वशिष्ठ जी उनको गुरुदेव है। विश्वामित्र जी से उन्होंने सारे शास्त्र विद्या उन्होंने शिक्षा ली है। और चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे। चैतन्य महाप्रभु जब वे अपना पितृपिंड प्रदान करने के लिए गया गए, गया में उनको ईश्वरपुरी प्रसाद में उनको भेंट हुई, तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रभु बोले गया यात्रा सफल हुआ। फिर आज मैंने गया में आया हूँ, गया में आना मेरा जीवन सार्थक हो गया, सचमुच से तीर्थ में आने का मेरा फल मिल गया। फिर क्यों? फिर जब तक हमें देख ला चरण कुमार आज एक शुद्ध संतों का संतों को मैंने मिला है और उनसे मैंने दीक्षा महाप्रभु ने ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करते हुए महाप्रभु कहते हैं तीर्थ पीटे दिले तरह से ज्ञान तुम्हारा दर्शन मात्र कोटि पितृगण सही करे भगवंत पाए। कि जब हम पितृपिंड प्रदान करने के लिए जिसको उद्देश्य में हम पिंड प्रदान करते हैं तब उनका ही उद्धार होता है, लेकिन जब किसी संतों का दर्शन करते हैं, जब किसी संतों का दर्शन करके उनसे दीक्षा मंत्र ग्रहण करते हैं, महाप्रभु ने कहा तुम्हारा दर्शन मात्र कोटि पितृगण, केवल संतों का दर्शन मात्र से ही करोड़ पितृ पुरुष कहते सही करे भववंत पाए विचार। उसी समय में ही वे भववंत से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र ने बताया कुलम पवित्रम जनक पिता था वसुंधरा वसतिश्च धन्या निर्गति स्वर्ग के पितर पितृसा जैसा कुले वैष्णव नाम। इसी खानदान में एक कोई उत्तम महाभागवत कोई अगर जन्म ग्रहण करे, एक शुद्ध संत अगर जन्म लिया कहते कितना लाभ है? कहते कुलम पवित्र, कहते उनके 21 पीढ़ी उद्धार हो जाते हैं। और हमारे चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कहते त्रिकोटि कुल हर श्री वैभवास। जब महाप्रभु का बड़े भाई विश्वरूप जब संन्यास ग्रहण किया उनको पिता माता रो रहे थे, दुखी हो रहे थे, कहते आप क्यों दुखी हो रहे हो? कितने सौभाग्य से तब संतान भगवान का भजन करता है, संन्यास ग्रहण करता है। अगर किसी खानदान में एक शुद्ध वैष्णव जन्म ग्रहण किया तो त्रिकोटि वहां पर तीन करोड़ तीन करोड़ नाम दिया त्रिकोटि कुल है श्री वैकुंठवास, त्रिकोटि खानदान हमारे उद्धार हो जाते हैं। इतने महिमा है एक वंश में एक शुद्ध वैष्णव का दर्शन अगर भगवान का कोई भक्ति करेगा। कर जनक पिता था जो पिता माता उसको जन्म दिया, बच्चे उद्धार होने से पहले उनको पिता माता का उद्धार हो जाता है। कहते नृत्य स्वर्ग पितर पितरे साहब कितने सारे पुर को जो जब देखते हैं किसी खानदान में कोई एक वैष्णव जन्म ग्रहण कर दिया भगवान की भक्ति करने वाले जन्म हो गए कि तो नाच उठते हाथ उठाएंगे हमारा अहोभाग्य है हमारा परिसर में एक वैष्णव पुत्र जन्म ग्रहण किया। और वसुंधरा वसतिश्च धन्या जिस पृथ्वी पर वो जन्म ग्रहण करता है कि वो पृथ्वी भी उनका चरण स्पर्श पा करके वो भी अपना जीवन को कृत्य कृत्य मानता है। इसलिए चैतन्य भागवत में भी श्लोक आया कि जब कोई एक संत कृष्ण प्रेम में महाप्रभु का प्रेम में विभोर होकर के हाथ उठा करके नृत्य करे तो उसका कितना लाभ है? जब ऐसे हाथ उठा करके नृत्य करता है स्वर्ग में देवता का कल्याण होता है। जब उनका चरण स्पर्श पृथ्वी को प्राप्त होता है पृथ्वी आनंद कुमार घेर उठती है। जब उनका दृष्टि जिधर उनका दृष्टि पड़ता है उधर भी सारे अमंगल दूर भाग जाते हैं, सर्वत्र मंगल मंगलमय हो जाते हैं। एक शुद्ध वैष्णव का दर्शन सीखना था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस अखार जो स्वयं राधा भाव दूति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम जो स्वयं राधा रानी के अंग कांति भाव को लेकर के स्वयं भगवान आए वो गर्मी जीवन में ईश्वर को गुरु रूप में ग्रहण करके अपना जीवन को धन्य कर दे। जब वापस आते हैं महाप्रभु संपूर्ण रूप में कृष्ण प्रेम में सरावर मत हुए आए। अभी तो महाप्रभु तभी से संपूर्ण रूप में कृष्ण रंग में रहते। इसलिए जितने हम शास्त्र हम पढ़ते हैं हर शास्त्र में, इसलिए श्री सुधो गोस्वामी जब श्रीमद् भागवत प्रारंभ कर रहे थे सौनकादिश्लोक का प्रश्न करने देने पर उसी समय वो सर्वप्रथम प्रार्थना करते हैं कत जम प्रवजंत मनुपेतमपेत कृतम द्वैपायन विरहता तरवायु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदु स्तं सर्वभूत हृदय मुनिमान त्वस्मि। वो सर्वप्रथम अपना गुरुदेव को वंदना करते हैं। इसलिए हमारा जो भारतीय संस्कृति, ये मूल जो वैदिक संस्कृति, ये संपूर्ण रूप में गुरु जी को ऊपर निर्भर करना है। इसलिए जीवन में जिनका गुरु नहीं उनका जीवन तब तक सुर नहीं होना है। जब तक जीवन में गुरु कर्म करता है तभी वास्तव जीवन की प्रारंभ तभी होना है। एक संत एक कथा सुना रहे, वो कथा है पानी में एक चिड़िया रहता है। आप देखे होंगे कभी डूब डूब करके वो मछली पकड़ता है। अब वो जो मछली पकड़ता और मछली पकड़ करके डायरेक्ट नहीं खाता, वो मछली को पकड़ कर पहले ऊपर में फेंकेगा फिर दो बार उसको पकड़ करके फिर खाता है। उसको एक स्वभाव है। फिर एक व्यक्ति ने वो चिड़िया की मछली कैसे पकड़ता है और कैसे फेंक करके दो बार पकड़ करके खाता है उसको देख लिया। देख करके उसने क्या किया, एक लकड़ी की चाकू बनाया। अब बना करके वो ऐसे ऊपर फेंकता है और उसको पकड़ता है। अब पकड़ ऐसे करके प्रैक्टिस करते करते जब अच्छे तरह से उसने प्रैक्टिस कर लिया, अब एक लोहे की चाकू बनाया। अब लोहे की चाकू बना करके ऊपर में ऐसे फेंकता है और उसको पकड़ लेता है। अब इसी को ही अपना जीविका निर्वाह रूप लगा लिया। जब देखा बहुत सारे लोग एक जगह थे वहां पर वहीं पर वो खेल दिखाता है, देखा करके पैसा कमा। एक व्यक्ति ने उसको देख करके बोले धन्य तेरे गुरु जी है जिसने तुमको ये विद्या सिखाई। जब ऐसे बोले इतने में उसने कहा हमने थोड़ी बोले कोई गुरु बनाया, हमने किसको गुरु नहीं बनाया, हमने तो ये चीज अपने आप सीखा, हमको कोई गुरु गुरु नहीं बनाया। इतने में एक व्यक्ति ने कहा बड़ी सुंदर कला तेरे पास में और एक बार ये कला को दिखाओगे। इतने में उसने जब वो चाकू को फेंक करके उसको दो बार पकड़ने के लिए गया उसको लक्ष्य चुक गया और वो चाकू उसको नाक के ऊपर में गिरा। नाक के ऊपर में गिरते उसका नाक ही कट गया। क्या देखो यहाँ पर उसका गुरु कौन था, किसने सिखा था, वो चिड़िया से उसने सिखा था। अभी तक उसको विद्या सही सही काम कर रहे थे लेकिन जब वो चिड़िया रूपी गुरु को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया तभी साधारण जगत में विद्या भी निष्फल हो गया। उसको नाक के ऊपर में गिरा तो उसको नाक ही कट गई। जब ये साधारण जड़ विद्या हम किसी से सीख करके जब उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे विद्या निष्फल हो जाता है। और ये अपराध दिव्य विद्या जो भगवत भक्ति की जो विद्या ये तो दिव्य विद्या है, ये तो दिव्य ज्ञान है, इसके लिए भी गुरु जी की जरूरत है। इसलिए हमारा शास्त्र में किसी शास्त्र ग्रंथ में पढ़िए बगर गुरु के जिसको तुलसीदास कहते हैं बिनु गुरु भवनी ही तरे न कोई, जो बिनी चीज शंकर सम हो ब्रह्मा शंकर जी के बराबर हो जाओ बिनु अगर गुरु ग्रहण नहीं करोगे तो भवसागर को हम तर नहीं सकते। इसलिए हमारा शास्त्र में गुरु जी की महिमा तो पूरी ही गुरु जी की महिमा बताए। इसलिए हम लोगों को अगर भगवत भक्ति करना इसलिए सर्वप्रथम सदगुरु चरण आश्रय चाहिए। देखो एक बात है कि गुरु कर जान के पानी पियो छान के, ये भी एक बात है। इसलिए हमें वहीं पर गुरु करण करनी चाहिए। पद्म पुराण में बताया संप्रदाय विहीना जो मंत्रास्ते विपुला मुखा अतः कलो भविष्यन्ति चत्वार संप्रदाय। तथा अगर कलयुग में भगवान की भक्ति करना तो ये पद्म पुराण में बताया हमको वैष्णव गुरु ग्रहण करनी चाहिए, अवैष्णव उपदेश करने मंत्रण निरंतर। अगर वैष्णव छोड़ करके अगर अवैष्णव से अगर मंत्र ग्रहण किया तो शास्त्र बताया ऊपर नहीं मिले ठुक नरक जाना पड़ेगा। इसलिए हमें वैष्णव गुरु ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा केवल मैंने कलयुग में अगर किसको भक्ति करना, मैंने चार व्यक्तियों को भेजूंगा, ये चार स्थान पर मैंने चार नाव दूंगा। अगर चार जागाओं में कोई अगर एक जागा में जाओगे तो तुमको भवसागर से पार हो जाओगे। बोले कहाँ कहाँ पर, एक सर्वप्रथम मैंने स्वयं लक्ष्मी को भेजूंगा, जिसको रामानुज संप्रदाय में जिन्हें का आचार्य श्री रामानुज बनेंगे। दूसरे व्यक्ति को भेजूंगा जो ब्रह्मा, जो कि हमारे संप्रदाय में जो ब्रह्मवाद है गौड़ीय संप्रदाय, इसलिए उसमें आचार्य की मध्वाचार्य बनेगा। एक व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को शंकर जी को मैं भेजूंगा जिसमें स्वयं निम्बादित्य आएंगे। और चौथे व्यक्ति चतुसर ब्रह्मा का मानस पुत्र चतुसर को भेजूंगा जिन्हें आचार्य निम्बाद आचार्य। ये चार वैष्णव संप्रदाय, अगर मंत्र लेना तो ये चार संप्रदाय से कोई एक वैष्णव संप्रदाय में अंतर्भुक्त होकर के अगर हम मंत्र ग्रहण करेंगे, शास्त्र बताया जरूर आपको भगवान मिलेंगे ही। ये ज्ञान देते हैं शास्त्र। अगर ये चार संप्रदाय को छोड़ करके अगर अन्यत्र अगर कोई मंत्र ग्रहण करे, शास्त्र बोलता है निष्फला तो मंत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि वो मंत्र का भी गुरु परंपरा नहीं होगा, वो सिद्ध मंत्र नहीं होगा, वो भगवान से जीवित हुए मंत्र नहीं होगा। इसलिए अगर हमें कहीं सदगुरु चुनने चाहिए, शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में आश्रय ग्रहण करते हुए अगर भगवान मिलन करें तो शास्त्र ज्ञान देता है भगवान हमें मिलेंगे ही। हम यही पर अपना वक्तव्य को वाणी समाप्त करना। अभी दूसरे दूसरे वैष्णव लोग भी
इन्होंने बतलाया यदि हारमोनियम सीखने के लिए गुरु की जरूरत है, इंजीनियरिंग डॉक्टरी पढ़ने के लिए प्रोफेसरों की जरूरत है, बच्चों को पढ़ने के लिए पाठशाला में जाने की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, तो जो अवांग मन सोगोचर भगवान है और सबसे कीमती चीज है ये, तो उसको बतलाने के लिए रास्ता कोई व्यक्ति की जरूरत नहीं है क्या? अवश्य ही जरूरत है। चाहे ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो, उनके समान कोई व्यक्ति हो तो भी बिना गुरु के उसको ज्ञान नहीं हो सकता, न भगवान को प्राप्त हो सकता। बिनु गुरु भवनिधि तरै न कोई, जो बिरिंच शंकर सम होई। इसलिए भगवान राम ने भी वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, कृष्ण भी भागरु मुनि को गुरु बनाया, चैतन्य महाप्रभु जी ने भी ईश्वर परिपाद को गुरु बनाया। जब भगवान के अवतार ही करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हम जैसा करते हैं साधारण लोग भी वैसा ही करें। कल या परसों हमने भक्ति के संबंध में बतलाया था, अपने तन से मन से वचन से, वचन के अतिरिक्त भावना से भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनुकूल रूप में वैष्णव के अनुगत्य में गुरु के अनुगत्य में तेज धारावत अविच्छिन्न गति से जो चेष्टाएं होती हैं उसको भक्ति कहते हैं। ये बात तो ठीक है, भक्ति कोई भी क्रिया हो, वी शुड डू फॉर टू प्लीज कृष्ण, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमारी शारीरिक चेष्टाएं होने चाहिए, यही भक्ति है। साधारण रूप में जो कुछ भी लौकिक ही वैदिक ही जो कुछ भी क्रिया करते हैं भगवान के लिए कीजिए, इसी को साधारण रूप में भक्ति कहते हैं। इस भक्ति का तात्पर्य है, सब भक्त लोग एक ही प्रकार के नहीं होते, एक ही जैसा नहीं होते, उसमें तात्पर्य है जितनी अधिक भक्ति शुद्ध होगी, ममता युक्त होगी, प्रेम युक्त होगी, उतने ही श्रेष्ठ है। ध्रुव महाराज जी 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने में ही भगवान को प्राप्त कर दिया, किंतु किस लिए? उनके पिताजी उत्तानपाद ने उनको अपनी गोदी में नहीं बैठाया। मैया उसकी विमाता ने कहा, यदि पिता की गोदी में बैठना है, राज्य का अधिकारी होना है, तो मरो और मर करके हमारी कोख में आओ और जन्म ग्रहण करो, तब बैठो। छोटे बालक के हृदय में बात चुभ गई, रोता हुआ अपनी मैया के पास में गया। मैया ने सांत्वना दी और बोली, जी देखो श्री हरि समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं, तुम हरि की आराधना करो। जंगल में गया, मथुरा में जमुना में स्नान किया, नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ने उसको मंत्र दिया और वो वहीं के पास ही मधुबन में ऊंचे टीले में बैठ करके भजन करने लगा। पहले 1 महीने में सूखे पत्ते पानी इत्यादि पी करके जीवन निर्वाह करता रहा, दूसरे महीने में छोड़ करके इस तरह से छोड़ता गया, ये भी खाना बंद कर दिया, 15 दिन के बाद में खाता, इसके बाद में उसको भी बंद कर दिया, केवल पानी पीता रहा, वो भी 15 दिन 16 दिन के अंदर में एक बार, चौथे महीने में उसको भी छोड़ दिया, और इसके बाद में छोड़ करके हवा लेने लगा केवल, और कुछ नहीं, श्वास। इसके बाद में उसको भी छोड़ दिया 5वें महीने में, और एकदम समाधिस्थ हो गया, भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने तुरंत उसे दर्शन दिए, कुछ बोलना चाहता था, भगवान ने शंख उसके गालों में छुला दी, स्तुति करने लगा, भगवान को प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा, जो 36,000 वर्ष तक अपने पिता का नहीं बल्कि उससे भी बड़ा राज्य का तुम भोग करेगा, इसके बाद में हमारी गति को प्राप्त होगा, इसको सकाम भक्ति कहते हैं। यद्यपि भगवान को पाया, किंतु कामना थी ना राज्य की, लौकिक वस्तुओं की। यदि भगवान की सेवा की कामना होता तब तो ठीक था, गोलोक वृंदावन में पहुंच जाता, किंतु नहीं हुआ। जब उसके मृत्यु का समय हुआ तो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान पर चढ़ने के लिए भगवान के दूतों ने कहा, कहे मेरी मैया कहाँ है? वो तो मेरी गुरु है, उसी के बतलाए हमने से मैं चला, अभी मैया के प्रति भी आ सकती है, उतनी भगवान के प्रति नहीं। यदि मैया नहीं जाएगी तो भगवान के पास मैं नहीं जाऊंगा, बतलाओ किसकी प्रधानता रही। इसलिए उनको इसी ब्रह्मांड के अंतर्गत में भगवान का एक हरि लोक है, वही मिला, बैकुंठ नहीं मिला या ऊपर नहीं मिला, इसको सकाम भक्ति कहते हैं। इनसे श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त होते हैं। ज्ञानी 2 प्रकार के, एक ज्ञानी जो कि हम ब्रह्मास्मि खर्वम खलु इदम ब्रह्म कहते हैं, कि यह सब कुछ ब्रह्म ही है, सर्वम इदम खलु, निश्चित रूप में सब कुछ जो प्राणी है, मनुष्य है, पेड़ पौधे जो कुछ भी है, यह सभी ब्रह्म है। अरे ब्रह्म है तो तुम भी ब्रह्म है, तो बिलबिलाता क्यों है दुख से? सभी ब्रह्म नहीं है। शंकराचार्य ने कुछ उल्टा अर्थ कर करके कुछ माया, भगवान की माया फैला दी, भगवान का ऐसा ही आदेश था, शंकर का दोष नहीं, शंकर तो शंकर ही है, भगवान के भक्त हैं, किंतु भगवान की इच्छा से जो दैत्य दानव है उनसे भगवान को छिपाने के लिए ऐसा ही उन्होंने कह दिया, अर्था अर्थ कुअर्थ कर दिया, हम ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के दास हैं। तो एक होता है ये जो मुक्ति चाहते हैं, ब्रह्म में मिल जाना चाहते हैं, और दूसरे होते हैं भगवान के तत्व को जानते हैं, समस्त प्राणियों में अपने आराध्य भगवान को देखते हैं और भगवान में समस्त जीवों को देखते हैं। ये उत्तम भागवत होते हैं, इनको ज्ञानी भक्त कहते हैं। भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान होता है, इनके आराध्य देव को भूख नहीं लगती, वो तो विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करने वालों के भी ईश्वर है, भूख भी नहीं, चलने से पैर थकता नहीं, पैर की सेवा क्या करेंगे, प्यास न लेके जो पानी लेकर के दे। प्रहलाद महाराज जी के नृसिंह जी उपास्य देव हैं, आए हिरण्यकश्यप को मार करके इनकी रक्षा की, प्रहलाद ने क्या सेवा की, स्तुति कर दी, बस भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसलिए ज्ञानी भक्त लोगों का भगवान या ब्रह्म, उनको भूख नहीं, प्यास नहीं, थकते नहीं, उनको कोई सेवा की जरूरत नहीं है, इसलिए सेवा नहीं कर सकते। इनसे श्रेष्ठ शुद्ध भक्त है कौन, अम्बरीश महाराज, भागवत में उनका उत्तर है। अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते, राजा होकर के भी भगवान के मंदिर में अपने आप झाड़ू देते, लिखते, पोतते, अर्चन अपने आप करते, राज्य ब्राह्मण लोग और मंत्री लोग चलाते थे। इस तरह से समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करते थे। यद्यपि ये साधक हैं, प्रहलाद जी सिद्ध हैं, तो भी उनसे श्रेष्ठ इनको माना गया, इसीलिए ये ठाकुर जी को नहलाते हैं, अर्चन करते हैं, पानी देते हैं, रसोई बना करके भोग लगाते हैं, वृंदावन के धाम में उनकी परिक्रमा करते हैं, मन से भगवान का चिंतन करते हैं, इसी तरह से सभी इंद्रियों से करते हैं, इसलिए श्रेष्ठ हैं। किंतु एक और प्रेमी भक्त इनसे अधिक होता है, हनुमान जी प्रेमी भक्त हैं, दिन रात भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते। एक समय भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता जी, लक्ष्मण जी ने सभा की और विचार किया, ये हनुमान दिन रात भगवान की सब सेवा वही करता है, हम लोगों को कोई सेवा नहीं करने देता। एक बात की जाए, हम लोग सब सेवा को बांट ले और उस बंदर को सेवा में न लगने दे। ऐसा विचार करके रात्रिकालीन सेवा सीता जी ने ले ली, दिन में पंखे डुलाने का काम, चमट डुलाने का काम और सब काम भाइयों ने, तीनों ने बांट लिए। हनुमान के जिम्मे कोई सेवा रखा ही नहीं। हनुमान जी जब आए तो उनको वहां से बाहर कर दिया इन लोगों ने, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, दिन भर तो तुम ही करता, हम लोग क्या करेंगे। तो हनुमान जी ने कहा, जे भाई एक बात करो, हमको अलग रख रहे हैं तो घर से बाहर रखो तो कोई बात नहीं है, भगवान को कभी यदि जम भाई आ जाए तो मैं चिटकू बजाने का काम कर दूं, बस यही एक सेवा दे। उन लोगों ने कहा, जे भगवान को भी तो, राम को तो जम भाई आती नहीं है, ना आएगी तो यह बजाए, इसमें हर्ज क्या है, ये तैयार रहे। अच्छा अच्छी बात है, जाओ तुम यही करो। जब ये दे दिया तो बाहर में रह करके घर में चुटकी बजाने लगे। चुटकी बजाते ही भगवान को जम्भारी आने लग गई, खाना पीना, प्यास भूख सब कुछ उनका बंद हो गया, ये लोग कोई सेवा ही नहीं कर सके, सारा दिन ऐसे ही रह गए भगवान, और ये लोग भी सेवा नहीं कर सके, वो चुटकी बजाते गए। अंत में रामचंद्र जी, अरे भाई इसको कोई सेवा दो, और नहीं तो चुटकी बजाता रहे, हम जम्भाई लेते रहेंगे, खाने पीना तो हमारा सब कुछ चला गया। तब अंत में उन लोगों ने इनको फिर से सेवा सौंप, ऐसे भगवान के सीता जी को चोरी जाने के बाद में इन्होंने ही समुद्र को लांघ करके पता लगा करके लाया, और रावण राम के युद्ध में इन्होंने ही वीरता के साथ में कितने रावण के पुत्रों को सब मारा, इस प्रकार से उनकी सेवा की, आज भी उनकी सेवा करते हैं। जहां हरि कथा होगी कोढ़ का रूप भी धारण करके पीछे बैठ जाएंगे, किसी को मालूम नहीं होने देंगे, उनकी कथा सुनेंगे, जहां भी होगी हजार रूप धारण कर। इसलिए हनुमान प्रेमी भक्त। किंतु हनुमान के सिवा में एक बात है, राम का आलिंगन नहीं कर सकते, अपना जूठा कोई चीज हो खिला नहीं सकते। जहां पर सीता जी के साथ में एकांत में राम है वहां नहीं जा सकते, उनके खटिया पर बैठ पलंग पर बैठ नहीं सकते। इसलिए उनसे श्रेष्ठ प्रेम पर भक्त पांडव लोग हैं। पांडव में अर्जुन है, उनके रथ को चलाते हैं, साथी का काम भगवान होकर के ब्रह्मा शंकर के उपास होने पर भी उनके रथ को चलाते हैं। अर्जुन कहते हैं रथ ले चलो, वहां वहां पर ले जाते हैं। यही नहीं, अर्जुन के साथ एक पलंग पर एक थाल में खाते हैं, दोनों बैठ करके एक भज एक पलंग पर सोते हैं। और तो क्या, अपनी बहन सुभद्रा का बहन की शादी भी अर्जुन के साथ में कर दी। इस तरह से उनके सेवक भी बन गए, गुरु भी हैं, सखा भी हैं, मित्र भी हैं, बंधु भी हैं, सब
सारथी भी है,
साथी भी हैं, सब कुछ है। कृष्ण ऐसे अपने भक्तों के सेवक बन गए। इसलिए हनुमान जी से प्रेमी भक्त से भी ये प्रेम पर भक्त श्रेष्ठ है। किंतु यदि कहीं अर्जुन ने विश्व रूप देखा महाभारत में, हाथ जोड़ करके खड़े हो, प्रभो मैंने आपको जो सखा कहा है, अपने घोड़ों को चलाया है, साथी बनाया है, आदेश दिया है कि वहां ले चलो, अब कृष्ण हे सखे, ओ मैंने बड़ी भारी गलती, आप तो विश्व ब्रह्मांड के सस्ताओं के सस्ता हैं, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, हाथ जोड़ करके स्तव स्तुति करने लगे। ऐश्वर्य भाव आया, उनका वह प्रेम सखा का प्रेम दूर हो गया। इसलिए इनसे भी शेष जादव और जादव में भी उद्धव है। उद्धव जी कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं, सेनापति हैं, मंत्री हैं, सेवक हैं, सभी कुछ है। केवल उद्धव को कृष्ण ने अपना प्रिय और योग्य समझ करके वृंदावन में भेजा, अपने माता पिता को सांत्वना देने के लिए। और किस लिए भेजा, उनकी प्राण प्रियतमा जो गोपियां हैं उनके विरह में तड़प रही हैं, उनको सांत्वना देने के लिए। क्या पांडवों को भेज सकते थे, कोई दूसरा जादव जा सकता था, नहीं, इनको भेजा, इसके योग्य थे। किस लिए भेजा, इसलिए नहीं कि उनको सांत्वना दे, जानते थे कि इनसे सांत्वना नहीं होगी, उनकी विरह की व्यथा और बढ़ जाएगी। इसलिए भेजा कि जिस पाठशाला में, जिस विद्यालय में मैंने प्रेम की पाठ सीखी है, प्रेम का पाठ सीखा है, उद्धव को उसी पाठशाला में भेजूं। वहां पर प्रिंसिपल राधा जी है उस प्रेम की, ललिता विशाखा एक एक डिपार्टमेंट की प्रोफेसर है, उन लोगों की विद्यालय में, विश्वविद्यालय में जाकर के प्रेम की प्रेम का पाठ पढ़ करके आएगा तो हम अपने दुख की बातें इससे कुछ कह सकेंगे। गोपियां तो अपने विरह की व्यथा अपने अपनी सखियों से कुछ कह लेती हैं, उतार देती हैं, किंतु कृष्ण के लिए संभव नहीं है। इसलिए उद्धव जी को भेजा। गए तो गोपियों ने पूछा, अरे उद्धव बतला सकते हो, प्रेम दो प्रकार का होता है, एक स्वार्थ प्रेम, एक निस्वार्थ प्रेम। स्वार्थ प्रेम, एक भिक्षुक किसी के दरवाजे पर राधे राधे गया, कहा भिक्षा मिल गई, चल पड़ा। यदि गृह मालिक आज, अरे जरा थोड़ा ठहर जाइए, हमें कृष्ण की बातें सुनाइए, अभी समय नहीं है, मैं दूसरी जगह देना होगा। कोई विद्यार्थी पाठशाला में पढ़ रहा, परीक्षा वहां की पास हो गई लोअर तक, फिर गुरु को प्रणाम करने कभी भी नहीं जाएगा। एक वेश्या, किसी पुरुष को आदर करती है, पुरुष को आदर नहीं करती, पैसे का आदर करती है। जब पैसा सब ऐंठ लेगी तो उस पुरुष को कभी अपने दरवाजे पर आने नहीं देगी। एक कामी पुरुष स्त्री से उसी समय तक प्यार करता है, प्रेम, जब तक उसकी कामना नहीं पूरी हो। एक हिरण जंगल में रहता है, जंगल जल गया तो उस जंगल में फिर जाएगा नहीं। पक्षी पेड़ों पर रहते हैं और पेड़ यदि जल गया, सूख गया, जब उसमें फल और पत्ते नहीं है, फूल नहीं है, और फिर नहीं जाएगा। ये स्वार्थ का प्रेम है। हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति निस्वार्थ था, हमने उनसे प्रेम के बदले कुछ नहीं चाहा। कृष्ण का प्रेम भी ऐसा ही था, उनका भी प्रेम निर्मल था, किंतु उद्धव बतलाओ तो ये प्रेम कैसे टूट गया। उद्धव सिर खुजलाने लगे, उस विद्यालय में उनकी भर्ती नहीं, स्कूल को देखा, टीचरों को देखा, लौट आए, पाठशाला में भर्ती होकर के वो प्रेम नहीं सके, वृंदावन के तीर्ण गुल्म भी नहीं हो सके। पीछे प्रार्थना भगवान से की, आशा महो चरणे, मैं वृंदावन में कुंज गलियों में कहीं घास भी होकर के जन्म लूं और गोपियां चलते समय अपने पैर की धूली से हमें अभिषिक्त, हमारा जीवन सफल हो जाए। इसलिए गोपियों का प्रेम अथाह है। इसलिए कृष्ण भी कहते हैं, मैं ऐसे जो गोपियां हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, लोक धर्म, वेद धर्म, पति, अपने बंधु बांधव, ये दुर्जर गृह की श्रृंखलाएं जो थी बेड़ियां, उनको तोड़ करके कृष्ण से मिली। कृष्ण कहते हैं, इसके लिए मैं तुम्हारा चिरऋणी हूं। तुम अपनी सहृदयता से, साधु स्वभाव से हमें क्षमा भले ही कर दो, किंतु मैं तुम्हारा ऋणी हूं। ये गोपियों का प्रेम ही भागवत का परम सत्य और प्रयोजन तत्व है। इस प्रकार से ये शेषतम भक्ति का हुआ। राधा जी में भक्ति की अंतिम दशा मोहन मादन दिव्योन्माद इत्यादि तक है, जो और किसी में नहीं है। अब कृष्ण अवतरित हुए, इसी प्रेम को कुछ देने के लिए, कुछ आस्वादन करने के लिए। कृष्ण के अवतार के बहुत से कारण हैं, किंतु उनका मूल कारण आने का काम भक्तों को विनोदन करता था। भक्त कौन? सबसे श्रेष्ठ भक्त वहां के सखा सुबल सिद्धाम इत्यादि, उनसे भी नंद बाबा जसोदा और ऐसे बात्सल रस वाले, उनसे भी श्रेष्ठ गोपियां, इनका विनोदन करने के लिए और राधा जी की सर्वश्रेष्ठता दिखलाने के लिए उन्होंने रास लिया। सब गोपियों को छोड़कर राधा जी को लेकर के चले गए। इसलिए राधा जी के हृदय में जो भाव है वही सबसे श्रेष्ठ है, इसी के लिए वो आए। परीक्षित महाराज जी चार दिनों तक हरि कथा सुनी, पांचवें दिन में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कुछ विश्राम करो, पानी पी लो। ओहो, पानी की बात मत कीजिए। निवृत्त तरसई उपगीयमानात् भवस्तदात् मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् विराज्येत बिना पशुपना। ओहो, जो संसार से परम विरक्त हैं, रसिक हैं, तत्वज्ञ हैं, कृष्ण के तत्व को जानने वाले हैं, कृष्ण के रस में डूबे हुए हैं, श्याम रस में डूबे हुए हैं, उनके मुख से यदि हरि कथा निकलती है तो भौरों के लिए पुनः पुनः जन्म और मरण को रोकने के लिए राम बाण औषधि है, निश्चित अचूक निशाना, अचूक औषध है, कभी व्यर्थ नहीं हो। जो कानों में सुनने में परम मनोहर है, मधुर है, और उसका अर्थबोध यदि उन कथाओं का हो तो मन के लिए भी बड़ी मनमोहक और सुंदर होती है। इन कथाओं को जो सुनने से विमुख होता है वो आत्मघाती है, अर्थात शरीर को सुसाइड करने से वो सुसाइड पूरा नहीं है, फिर जन्म लेगा, फिर स्वर्ग नरक में जाएगा, फिर मनुष्य लोक में आएगा। किंतु जो ऐसी कथाओं को सुनने से विमुख रहता है उसकी आत्मा ही समाप्त हो जाती है सदा के लिए। मनुष्य जन्म पाकर के ऐसा सुयोग पाकर के भी जो नहीं करता। परीक्षित महाराज जी कहते हैं जे प्रभो, महाभारत का युद्ध हो रहा था, ठीक है, महाभारत का युद्ध हो रहा था, उसमें जैसे तिमिंगिल माछ होती है समुद्र में, एक होती है बड़ी व्हेल, वो व्हेल मछलियों को भी खा जाने वाली एक और मछली होती है, उसको तिमिंगिल कहते हैं। ऐसे ऐसे महारथी लोग भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादि महारथी, जिसमें भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु है, जब तक इच्छा नहीं करेंगे उनको कोई नहीं मार सकता, और द्रोणाचार्य जी की भी वही स्थिति है, यदि वो इच्छा नहीं करेंगे नहीं मरेंगे, कोई यदि कह देगा कि अश्वत्थामा हमारा बेटा मर गया और युधिष्ठिर कह देंगे तब मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा, अन्यथा मर नहीं सकते। इसलिए कृष्ण ने भीम युधिष्ठिर को कहा तुम कहो अश्वत्थामा मर गया, एक हाथी को भीम से कहा जो मार डालो, हाथी मर गया कहा जी बोलो अश्वत्थामा मरा गया। उन्होंने कहा अश्वत्थामा मरा गया इति गजह, गजब कहा वो कोई सुन नहीं पाया, जोर से शंख बज गया। और इसी के लिए भगवान की बात को नहीं मानने से उनको नरक भी देखना पड़ा था युधिष्ठिर को। भगवान को प्रसन्न करने के लिए यदि अधर्म सा भी कुछ लगता है, झूठ बोलना भी ये धर्म है, और कृष्ण के प्रसन्नता के लिए न हो करके धर्म भी कोई करे उनके आज्ञा के विपरीत तो धर्म नहीं अधर्म हो जाता है। इसलिए ऐसे कौरवों से सुसज्जित सेना को जिनमें ऐसे महारथी लोग थे और हमारे पिता के पिता पितामह अर्जुन भीम युधिष्ठिर इत्यादि ऐसे कौरवों के सेना के सागर को बछड़े के खूर के समान अन्यासी पार कर गए। उनकी कुछ बातें सुनाइए, ये किसकी कृपा से हुआ? कृष्ण अर्जुन ने कहा बीच में रथ ले चलिए, गए बीच में दोनों तरफ के योद्धाओं को देखा और सब उनकी आयु ले ली। अर्जुन से बोले निमित्त मत्र भाव भाव सभ्य साची, तुम मैंने देखो मार दिया है, तुम अब इनको हमारे इच्छा से इसका तुम निमित्त बन जाओ। और जब मैं अश्वत्थामा के बाण से अपने माता के गर्भ में मर ही गया था उस समय कृष्ण ने ही अपनी गदा लेकर के गर्भ में जाकर के हमारी रक्षा की और उसको समाप्त कर दिया था अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को। ऐसे जो हमारे प्राण बचाने वाले, मैं कौरव पांडवों का बीज हूं संतान का, मुझे बचाया, ऐसे कृष्ण की कथा है। तब परीक्षित महाराज जी बड़े सुखदेव गोस्वामी महाराज बड़े आनंदित होकर के कहने लगे कृष्ण के जन्मने की बात में, किस प्रकार से ब्रज में और मथुरा में दोनों जगह जन्म लिया इत्यादि विषयों पर श्रीमान तीर्थ महाराज जी कुछ प्रकाश डालेंगे।